ओम शांति। आज भट्टी का दूसरा दिन है, प्रातःकालीन सत्र। इसमें हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1969 में जिस वर्ष ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आप ज्ञान मार्ग पे आए और फिर अपने मैट्रिक के एग्जाम पास करके 1972 में समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। आप गुजरात से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं, इसलिए आरंभ में गुजरात की धरनी पर बड़ौदा, भरूच, सूरत, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर आपने सेवाएं दी और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में भावनगर में रहकर आपने सेवाएं दी। और फिर तो 1993 में ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हो गया था। बाबा ने आपको वहां के लिए निमित्त किया, वहां पर आपने रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि आदि जिम्मेवारियां संभाली। और उसके बाद 2010-11 में तो नीचे शांतिवन में विस्तार हो गया, वहां पर भी आवश्यक उपयुक्त हैंड चाहिए था, तो बाबा ने आपको वहां निमित्त बनाया। आप वर्तमान में बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, राजयोग शिविर की शिक्षिका हैं, SML भी आप कराते हैं और साथ साथ भट्टी की भी शिक्षिका हैं। तो अवश्य ही आपकी जो ये विशेषताएं हैं, इसी के बल पर आप देश में पूरे प्रांतों में भ्रमण करते हैं, राजयोग शिविर कराने, भट्टी कराने, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम कराने के लिए। 1985 में आपने युवा एकता पद यात्रा में भी पार्टिसिपेट किया, न सिर्फ पार्टिसिपेट किया लेकिन उसको लीड किया, जो सोमनाथ से दिल्ली तक थी। 91 में विदेश यात्रा भी की, फिर 92 में इंडो नेपाल अवेयरनेस कैंपेन में भी पार्टिसिपेट किया और हमारा जो डायमंड जुबली वर्ष था 1996, उसमें भी आपने कार रैली जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की तरफ से आयोजित की गई थी उसमें भी अपनी सेवाएं दी। तो आज हमारे बीच में गीता दीदी जी, आज का याद पता है आपको क्या है समान? मैं निराकारी एवं अलंकारी आत्मा हूँ। तो दीदी को हमने विषय भी यही दिया है, तो दीदी अपने अनुभव के आधार से हम सबको इस विषय की गहराई समझाएंगी, निराकारी और अलंकारी। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में आप सभी भी खास समय निकालकर तपस्या के लिए आए हैं। मधुबन कोई न कोई कारण से हम आते रहते हैं, तपस्या का विशेष लक्ष्य लेकर आप आए हैं। ये भूमि तपोभूमि है, बाप दादा मम्मा दादियों की कर्म भूमि भी है, तो यहां हम नेचुरल योगी बन सकते हैं। है बाबा का घर, बाबा का कार्य, बाबा की यादगार, तो सहज और स्वतः योगी हम बन सकते हैं। यहां हम साइलेंस में बैठकर बाबा से बात करते हैं, मधुबन घर महसूस होता है। परम पिता का प्यारा घर, बाहर लिखा है ना, बाप दादा का घर सो हम बच्चों का घर। ज्ञान सरोवर को रूहानी यूनिवर्सिटी कहते हैं। परम शिक्षक की वो भूमि है जहां से ज्ञान की प्रत्यक्षता हुई, और शांति वन को सतगुरु का दरबार कहते हैं। बड़ी सभा लगती है और दिन भर ज्ञान योग का सत्संग चलता रहता है। क्या तप किया सबने बताओ, कौन सी तपस्या की? समी पाने की। एक है देही अभिमानी बनने की तपस्या, वो फाउंडेशन है हमारा, जो आज के टॉपिक में भी है, निराकार। हमारा ओरिजिनल स्वरूप निराकारी स्वरूप है। जब इस सृष्टि पर आते हैं और पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण करते हैं तो साकारी बनते हैं। अभी है शरीर में रहते हुए अपने मूल निराकारी स्वरूप को महसूस करते रहना। क्योंकि आत्मविस्मृति के कारण ही हम देहभान में आते हैं, और देहभान में आते हैं तो पूरी दुनिया से अटैच हो जाते हैं। अब हमें फिर से चूंकि वापस घर जाना है, ड्रामा पूरा हुआ, जैसे दुनिया में कितने अच्छे अच्छे स्थानों पर घूमने जाते हैं, बड़ी खुशी भी होती है कि हमने ये देखा ये देखा ये देखा है? पर इतने सुंदर स्थान देखने के बावजूद भी आखिर क्या इच्छा होती है कि भाई अब घर चलो। फिर दोबारा निकलेंगे, ट्रैवल करेंगे, पर अब घर जाएंगे, थक गए अब। तो हम भी इस दुनिया के सफर पर निकले, पर आखिर तो आत्मा को इच्छा होती है वापस घर जाने की, रेस्ट करने। तो परम धाम में रेस्ट है, देह और देह की दुनिया का वहां विस्तार नहीं है, हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। बहुत चलते हैं, बहुत चलते हैं तो कहते हैं थोड़ा बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। तो आत्मा ने भी ड्रामा में वैरायटी दृश्य देखे, पार्ट बजाए, तो आत्मा को जब दुख मिलने लगता है तो थक जाती है। इस दुनिया से दुखी हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं तो क्या सोचते, लौकिक दुनिया में भी क्या कहते, अब तो ऊपर चले जाएं, भगवान उठा ले। तो ये समय है बैक टू होम, घर वापस चलना है, चलना है ना। अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि बहुत सालों से यहां रहे, अनेक जन्मों से रहे, अनेक पारिवारिक संबंधों में रहे, तो जाना नहीं चाहते हैं कई बार। डरते तो नहीं है ना, नहीं ना। क्योंकि ये ड्रामा का क्रम है, नियम है संसार का, तो उनको हमें बहुत खुशी से और समझ पूर्वक स्वीकार करना है। क्योंकि ओरिजिनल तो हमारी वो निराकार बिंदु रूप बीज रूप जो भी कहो वो स्टेज है, जब हमारे अपने अंदर सब कुछ समाया होता है। संगम युग में हम अपनी वो अनुभूतियां, बाबा लौकिक से हमें अलौकिक बनाते हैं और फिर अलौकिक से निराकार पारलौकिक बीज रूप बिंदु रूप स्टेज में हमें जाना है, जहां हम संगम युग में आत्मा में सारी अनुभूतियां भर लेते हैं, बीज बन जाते हैं। तो इसलिए अब दुनिया में भी लोग क्या कहते हैं, बैक टू नेचर। बहुत भौतिकता में चले गए, अब कहते हैं वापस कुदरती जीवन में आओ। तो हम भी अपना बैक टू नेचर अपनी ओरिजिनल स्टेज में जा रहे। कौन सी है स्टेज हमारी ओरिजिनल? निराकारी विदेही, और वो ओरिजिनल शुद्ध सत्य स्वरूप में हम जा रहे, जहां कोई विकार नहीं था। आत्मा बिल्कुल पावन बनकर जाती है, या तो योग बल से बनती है या सजा खा के बनती है, पर हर आत्मा को हिसाब किताब चुकाकर शुद्ध बनकर वापस जाना है। बैक टू होम, बैक टू नेचर ओरिजिनल स्टेज एंड बैक टू सोर्स। बाबा है सोर्स, अल्टीमेट सोर्स, जहां से हमें सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति मिलती है। अल्टीमेट सोर्स बाबा है, अविनाशी सोर्स, ऊंचे से ऊंचा सोर्स बाबा है। अब उनसे कनेक्ट हो जाना है, तो वापस घर जाने की बातें हम जानते हैं। पवित्र आए थे, पवित्र बनकर वापस जाना है। जैसे रोज सुबह नाह धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं, सारा दिन अनेक कामों में लगते हैं, अनेक स्थानों पर जाते हैं, कुछ ना कुछ धूल मिट्टी लग जाती है, तो फिर शाम को स्नान करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और कपड़े बदल कर घर के कपड़ों में रहते हैं। है ना, आत्मा को रिलैक्स किस में रखता है, है ना। भले आप ऑफिस में अपना बुटेड़ सुटेड़ बनकर जाते हैं, हाँ, पर रिलैक्स किस में लगता है, अपनी ओरिजिनल सिंपल ड्रेस में हमें रिलैक्स रखता है। तो ये है कि आत्मा को फिर रिलैक्स होना है, 84 जन्मों का और उसमें खास 63 जन्मों का प्रभाव मिट जाए और 21 जन्मों आपका जो रोल प्ले करना है वो रोल समा जाए आत्मा में। तो ये तैयारी तो संगम युग में करनी। बाबा कहते हैं ना 63 जन्मों का विकर्म विनाश करना है, इसलिए तो तपस्या कर रहे हैं कि उन विकर्मों के कारण जो आदतें बनी हैं, जो संस्कार बने हैं, वो हमें खत्म करना है। और 21 जन्मों के लिए जमा करना है, जमा करना है। क्यों सेवा करते हैं, क्यों सत्कर्म हम करते हैं, क्यों हम तन मन धन लगाते हैं, 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बाबा उसका मल्टीप्लाई करके देगा, एक जन्म की सेवा, एक जन्म का तप और 21 जन्मों का भाग्य मल्टीप्लाई बाबा करेगा। पर करना तो हमें ना, बीज हमें बोना है, कदम हमें उठाना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है कि जितना हम अपनी निराकारी स्थिति की साधना करेंगे, इस देह में रहते भी बार बार देहभान से न्यारे रहे। सिर्फ मैं आत्मा हूं इतना नहीं, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं, अलग हूं। क्योंकि मेन तो अटैचमेंट देह से हो गया ना, तो देह में रहते हर क्षण देह से कर्म करते हुए, हर क्षण देहभान से मुझे न्यारा रहना है। तो प्रैक्टिस करनी, अपने आप को समझाते रहना है ना। इस हॉल में हम बैठे हैं पर हॉल अलग है, मैं अलग हूं। इस सोफा कुर्सी पर बैठे हैं, सोफा अलग है, मैं अलग हूं। अगर हर कोई सोफा कुर्सी से अटैच हो जाए और फिर सोफा के साथ जाना चाहे तो मुश्किल हो जाएगा। एक कुर्सी से अटैच होंगे तो भी कुर्सी उठाना भारी लगेगा, पर अगर सोफा से अटैच हो गए तो और भारी, तो अनेकों से अटैच हो जाएंगे तो भारी हो जाएगा। इसलिए बाबा रोज पाठ पक्का कराते हैं कि आप आत्मा हैं, शरीर से अलग हैं। ये दुनिया 5 तत्व की है और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, साधन हैं, जो भी वैभव पदार्थ है, वो भी किससे बने हैं? 5 तत्व से बने। हमारे शरीर भी 5 तत्व से बने। हमें उन सब से डिटैचमेंट लाना है, मैं इनसे अलग हूं। क्यों बाबा ये तैयारी करा रहे हैं? क्योंकि बाबा आत्माओं को ले जाएंगे, शरीरों को यहां छोड़ना है। तो जीते जी प्रैक्टिस, ये मरना है, देह से अलग। वस्त्र हमने पहने हैं, हमें स्पष्ट है हम वस्त्र नहीं हैं, हम उनसे अलग हैं। अल्टीमेट हम शरीर नहीं है, शरीर अलग है, हम अलग है। तो ये अभ्यास करना है, अपने आप को रियलाइज कराना है, ये तप है, इसको तपस्या कहते हैं। वो गुफा में बैठकर तपस्या करते हैं, शरीर एक गुफा है और मैं आत्मा तपस्वी हूं, ये पक्का करना है। हम गृहस्थी नहीं, संसारी नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, हम योगी हैं, हम तपस्वी हैं। इस अवेयरनेस में, इस जागृति में, इस स्मृति में हमें रहना। बाबा हमें ज्ञान दे देते हैं पर प्रैक्टिस में हमें लाना है। तो जितना देहभान से न्यारे रहेंगे तो हमारे में रूहानियत, अलौकिकता अनुभव होगी, लोगों को लगे ये अलग ही है, इनकी आंखें अलग है, इनके चेहरे अलग हैं। क्योंकि जो बॉडी कॉन्शियस होकर बैठेगा वो अलग होता है, जो सोल कॉन्शियस होता है उनका न्यारापन उनके चेहरे से दिखाई देता है। देखो जो रोज सुबह का क्लास करते हैं, रोज योग में आ जाते हैं, ऐसे नहीं मुरली के टाइम आ जाते हैं, जिनको रोज प्रैक्टिस है उनके चेहरे देखो, और जो गुरुवार को एक दिन क्लास में आते हैं या हफ्ते में एक दिन आते हैं कभी कभी, उनके चेहरे अब बहुत फर्क महसूस होगा। रोज की प्रैक्टिस से हम निंद्रा जीत बनते हैं, तो हमें कोई आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, और हम देहभान से न्यारे रूहानी दिखाई दें। तो बाबा तो हमें कहते हैं ना कि तुम रूहानी बच्चे हो, रूहानी सेवाधारी। बाकी सेवा तो दुनिया में भी सब करते हैं, अपनी अपनी संस्था में, अपने अपने मंदिर आश्रम में, धर्मों में बहुत सेवा करते हैं लोग भी, पर हम कौन से सेवाधारी हैं? रूहानी सेवाधारी। तो ये क्यों बाबा हमें पक्का कराता है? क्योंकि अल्टीमेट हमें निराकारी बनना है, देहभान से डिटैच होना है। तो डिटैचमेंट तपस्या की नींव है। जब तक हम डिटैच नहीं होते हैं हमारा योग बाबा से लगेगा नहीं। योग निराकार से लगाना है ना, और हमें अभ्यास कौन सा है? साकार का। क्योंकि पार्ट में रहे, ज्ञान नहीं था, तो देहधारियों से योग लग गया, देह से अटैच हो गए, वैभव पदार्थों से अटैच हो गए, और उस अटैचमेंट में, देहभान में कई गलत आदतों से अटैच हो गए, स्वभाव बन गए। अब ये एक जन्म की तपस्या से बदलने हैं। तो बाबा ने देखो हमें कहा कि भल गृहस्थ में रहना है पर तुम गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो, निमित्त। हम सेंटर में निमित्त हैं, हम मधुबन में निमित्त हैं, आप घर में रहते निमित्त, हम सब निमित्त हैं। क्योंकि योगी बनना है तो डिटैचमेंट चाहिए। क्यों भगवान ने आदेश दिया देह सहित देह के सर्व धर्म संबंध को भूलकर मुझे याद करो? क्योंकि तभी याद कर सकते हैं जब सबसे निकलेंगे। तो देखो हरेक ने अपने आप को समेट लिया है। जो नियम धारणाएं बताई वो बाबा ने अशुद्धि से निकलने की बताई। तो अशुद्धियों से निकल गए हम, विकारी जीवन पवित्र जीवन बन गए, शुद्ध आहार विहार हो गए, सिंपल मर्यादा पूर्ण ड्रेस हो गए। तो ये बाबा ने गंदगी से निकाला, कमल बना दिया, कमल बन गए ना सभी। भले इस दुनिया में रहते हैं पर हम न्यारे हैं, प्यारे हैं। हर कर्मेंद्रिय को तपस्या से कमल बना रहे। ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप किए। देख लो, किसी के कान भरे, किसी को आंख मारी। लौकिक में क्या क्या किया अज्ञान में। कभी मुख से कड़वे शब्द बोले। हर कर्मेंद्रिय से, हाथ से, पांव से क्या क्या किया। जब हर कर्मेंद्रिय से पाप किए तो हर कर्मेंद्रिय से अब पुण्यात्मा बनना है। ये खुद संयम रखना है, ये खुद अपना सेल्फ कंट्रोल रखना है कि अब कोई कर्मेंद्रिय से पाप ना। मुरली में बाबा कितनी बार कहते हैं, अब तो बाबा मन की शुद्धि पर। समय कौन सा है कि मन शुद्ध और एकाग्र हो। जब मुख से बाजार का खाना छोड़ दिया तो मन से क्यों खाने का। मन से याद करते रहते हैं, हम फलानी होटल में जाते थे, बहुत भेलपुड़ी खाते थे, अब भाई ये क्यों याद करना है। मन से भी क्यों जाए, है ना। आंखों से फिल्में देखनी नहीं है अब तो, देखी हुई फिल्में याद क्यों करनी है। बीती हुई बातें क्यों याद करनी है। तो बाबा तो अब तो सूक्ष्मता में पहुंच गए। हम भी साथ साथ चलेंगे ना बाबा के साथ साथ। बाबा आगे आगे पढ़ाते जाएं और हम पीछे रह जाएं। देखो बाबा ने सब कुछ पढ़ा दिया, पढ़ाई का पार्ट पूरा हो गया। जो बाबा ने पढ़ाया वो हमने पढ़ लिया। प्रैक्टिकल बनने में देखो कितना टाइम लगता है। इसलिए कितने लंबे समय से बाबा तैयारी करा रहे। आज से 50 वर्ष पूर्व जब हम ज्ञान में आए तो याद है कि जो लौकिक गृहस्थी लोग थे वो भी बहुत सात्विक थे, नियम संयम वाले। आज समझ में आ रहा है कि बाबा ने क्यों इतने लंबे समय से पुरुषार्थ करा है। आज इतने विकार बढ़ गए हैं पर बरसों के पुरुषार्थ के कारण हमें कोई आकर्षण नहीं है ना। दुनिया में कितनी चीजें बन गई, पहले क्या था। जो 50-60 वर्ष पहले के भाई बहने बैठे हैं शरीर की आयु से, बताओ पहले कौन से साबुन थे। 2-3 थे हाँ, पर साबुन भी एक लाइफ बॉय था, लक्ष्य था, हमाम। और आज आज नाम भी नहीं याद होंगे आप। इतने साबुन, इतने ऑयल हो गए, इतने पाउडर, इतने क्रीम, कितना भौतिक बॉडी कॉन्शियस बनाने वाला संसार बन गए। तो बाबा ने बरसों पहले पुरुषार्थ कराया, आज इतनी नेचुरल पवित्रता सेल्फ कंट्रोल आ गया कि अब कोई आकर्षण ही नहीं होते, हम सेफ है। क्योंकि निराकारी बनना माना सभी प्रभावों लेपों से मुक्त हो जाना, अपनी ओरिजिनालिटी में आना है हमें। और दूसरा, पहले तो डरते थे अकेले जाना है तो डरते हैं, हाँ, क्योंकि बुद्धि में यही आता है अकेले तो डरता है इंसान, पर हमें तो बाबा के साथ जाना है। अगर इस भय को मिटाना है, अकेलेपन का डर लगता है ना, अगर उस भय को मिटाना है तो पक्का कराओ बाबा के साथ जाना है, मीन्स बाबा की याद में जाना है। तो आत्मा को हिम्मत और शक्ति रहे कि बाबा के साथ जाना है, बाबा की याद में, याद से साथ का अनुभव होता है ना। तो वो निराकारी स्थिति, इसलिए आत्मभिमानी बनाया, शरीर में रहते अशरीरी बनने का, अव्यक्त रहने का अभ्यास बाबा ने कराया। शरीर व्यक्त है, आत्मा अव्यक्त है, तो अव्यक्त स्टेज, फरिश्ता स्टेज, ये क्यों बाबा ने वैरायटी पुरुषार्थ कराए, क्योंकि अल्टीमेट बिंदु बन जाना है, निराकार हो जाना है। इस दुनिया में आत्मभिमानी हम रहते हैं, अव्यक्त रूप में रहते हैं और शरीरी रूप में रहते हैं, वो हमारी सेफ्टी की स्थिति है, वो हमारी सेफ्टी की स्थिति। हर आत्मा अपने अपने विचारों का प्रवाह लेकर हमें मिलती है ना, कोई क्या सोचता हुआ मिलता है, कोई क्या मनोस्थिति से हमें मिलता है, कोई चिंता में, भय में, कोई दुख की फीलिंग में, कोई गुस्से में, कोई वासना में, है ना। हरेक के मन की स्थिति अलग अलग है और हरेक के विचारों का प्रभाव जब वो हमें मिलते हैं तो हमारे पर आता है। पर अगर हम आत्माभिमानी स्थिति से मिलते हैं, योगी स्थिति से मिलते हैं, तो हमारे ऊपर योग का कवच आ जाता है। आत्माभिमानी स्थिति, सेफ्टी का लेयर आ जाता है, तो वो हमें प्रभावित नहीं करे, नहीं तो उनके साथ हम भी दुखी हो जाएंगे, बातों के प्रवाह में आ जाएंगे, हमारी भी मन की स्थिति ऐसी हो जाती है ना। पर आत्माभिमानी रहेंगे तो आप उनको मदद कर सकेंगे, आप प्रभाव में नहीं आ जाएंगे, पर आपसे उनको शांति या शक्ति मिलेगी, हम प्रभाव में नहीं आ जाएंगे। तो वो सेफ्टी हमें बनानी है, क्योंकि बाबा ने हमें सबके बीच में इसलिए रखा है कि हम उनको भी कुछ मदद करें, हम उनको भी शांति दें, शक्ति दें, खुशी दें। तो हमें पहले न्यारा रहना है, उसके प्रभाव से मुक्त रहना है, और फिर हमारा रोल सतयुग का भी है, निराकारी और अलंकारी अर्थात आज क्या कहा वरदान में, मनमना भव और मध्याजी भव। मध्याजी भव मान वारिस बनो, सतयुगी देवता स्वरूप वो हमारा अलंकारी स्वरूप है ना, सर्वगुण संपन्न स्वरूप है। तो वो सर्वगुण संपन्न, हम क्या कहते हैं सबको भाई, लोग पूछते हैं ना रोज कौन सी पढ़ाई करने जाते हो, तो क्या बताते, मनुष्य से देवता बनने की। तो सबको क्लियर है ना कि देवता बनना माना क्या बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, हर कर्म हमारा कला बन जाए। कलाकार कितना नेचुरल बना देता है और हम लोगों से नहीं बनता है, जिसको कला है वो कितना सहज क्या से क्या बना देते हैं। तो हर कर्म कला, हर कर्म में कुशलता, हर कर्म विधि से करना, तो वो बाबा रोज हमें सिखाते हैं कि खाना कैसे, पीना कैसे, उठना बैठना, देखना बोलना चलना सुनना कैसे, हर कर्म की कला बाबा सिखा। हमारा लक्ष्य है 16 कला संपूर्ण बनना। कोई एक बात की भी कमी है तो वो कमी खुद को भी खलती है और दूसरों के भी नोटिस में कौन सी बात आती है, कमी ही आती है। इस भाई में बहुत कलाएं, बस ये एक ही बात जरूर कहेंगे लोग, क्योंकि कमी ही नजर आती है, तो कमी क्यों रखना है। बाबा तो सब बातों से भरपूर कर रहा है ना, बाबा हमें कैसा बनाना चाहते, संपूर्ण संपन्न समान बनाना चाहते हैं, तो हम कमी क्यों रखते हैं, खुद भी महसूस करते हैं बस एक ही कमी है, पर है ना वो भी, एक कमी ही तो फेल कर देती, एक कमी ही तो बार बार अवस्था बिगाड़ती, चार्ट बिगाड़ती है, तो उसको भी खत्म करना है, एक कमी भी नहीं, बस सब कुछ मेरे में है, यही एक है, मैं बोल देती हूँ बस, अब वो भी बदलना है। वो भी हमें चेंज कर देता है। जब बाबा बना रहे हैं तो हम बन जाए ना, वे दुनिया में तो कमी करते रहते हैं, सब कुछ नहीं देते हैं ना, पर बाबा तो आप समान बना रहा है, संपूर्ण निर्विकारी। देवता बनना माना संपूर्ण निर्विकारी बनना, तो कोई भी अवगुण कोई भी विकार क्यों है ना, डबल अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो देवता बनना माना ये बनना है, ये महिमा याद रखनी है। ऐसे नहीं अच्छे अच्छे अलंकार पहनना, वो तो इस दुनिया में भी बहुत लोग देवताओं का रोल प्ले करते हैं, तो फिल्मों में वो ड्रेस पहनते हैं ना, पर इससे थोड़ी कोई देवता हो जाता है। कहते हैं ना कि भाई गधा शेर का चमड़ा पहन ले तो वो शेर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, अंदर की ताकत चाहिए, योग्यता चाहिए। तो हम तो सच में देवता बन रहे हैं, सिर्फ बातें नहीं है, सिर्फ झांकी में बैठने की बात नहीं है, रियल में देवता बनना है। तो सर्व गुण कितने गुण हैं? हाँ देखो, कोई कहेंगे 32 गुण, 36 गुण, 56 गुण, कितने गुण हैं? उसको धारण करने की सहज विधि बाबा ने हमें बताई कि अगर सर्व गुण संपन्न बनना है तो मूल 7 गुणों का स्वरूप बनो। बस 7 मूल गुणों को धारण करो, 7 गुणों से ही 36 गुण, 56 गुण स्वतः धारण हो जाए। जैसे भौतिक दुनिया में मूल 3 रंग है, लाल, नीला और पीला, 3 मूल रंग है 3, और उस 3 रंग से आज कितने कलर्स बने, कितने कलर शेड्स होते हैं? 150 से भी ज्यादा कलर शेड्स बने हुए। तो मूल मैं आत्मा 7 गुणों का स्वरूप हूं। शांति का गुण आएगा, अपने आप धीरज, शीतलता, सौम्यता आपके अंदर आएंगे। प्रेम स्वरूप बनेंगे, अपने आप शुभ भावना, सहयोग, भाईचारा सब आ जाएगा। तो संगम युग में हम 7 गुणों का स्वरूप बनते हैं। बाबा उन गुणों का सागर है, हम इन गुणों का स्वरूप है। तो सिर्फ रिपीट नहीं करना है, हम रोज साइलेंस में बैठकर अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं ओरिजिनली शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है, ये हमारी असलियत है, वो पक्का करना है। इसलिए होवनहार देवता सर्व गुणों से संपन्न स्वरूप, उसके लिए अभी हम पुरुषार्थ करते हैं कि मैं आत्मा 7 गुणों का स्वरूप, 1 गुण अनेक गुणों को साथ ले आता है, जैसे 1 अवगुण अनेक अवगुणों को लाता है, ऐसे 1 गुण अनेक गुणों को ले आता है। सोलह कला संपूर्ण बनाने के लिए संगम युग में एक ही कला को साध्य करना है, सिद्ध करना है। हर कर्म कला युक्त बने, माना श्रेष्ठ विधि से हम करें, उसके लिए संगम युग में एक कला सिद्ध बाबा ने करने के लिए कहा, बुद्धि योग की कला। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, जितना समय चाहो, बुद्धि को स्थित कर सके। देखो, बुद्धि अच्छी है, हर कर्म अच्छे होंगे। बुद्धि बिगड़ती है, सब कर्म बिगड़ने लगते। इसलिए क्यों योग हम करते हैं? ताकि कर्म अच्छे हों हमारे। बुद्धि शुद्ध एकाग्र है, तो सब कर्म आपके अच्छे बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम पेपर कौन सा होगा, यही होगा। उस सब क्षण आप स्थित हो गए तो पास हो गए। बाबा मिसाल देते हैं ना कि यहां ब्रेक लगानी है और वहां जाके लगी तो भी फेल। बुद्धि फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। डिटैच, डिटैच। ये प्रैक्टिस करने, बुद्धि योग की कला, संपूर्ण निर्विकारी बनना है मूल। एक अभ्यास बाबा सिखाते हैं, देही अभिमानी बनो। देह अभिमान सर्व विकारों की जड़ है। देह अभिमान में आए तो देह आकर्षण हुए, देह संबंधों का आकर्षण, देह के वैभव पदार्थ का आकर्षण, सब विकार आ गए। इसलिए देह अभिमान नहीं, इस बीज को ही खत्म करना है तो विकार का अंश भी नहीं रहेगा। डबल अहिंसक सबसे बड़ी हिंसा किसको कहते हैं बाबा? काम कटारी चलाना। आज भी था ना मुरली में, ये कोस करना बंद करो बाबा कहते। ब्रह्मचर्य बाबा ने धारण कराया, सबसे बड़ी अहिंसा। क्योंकि कोई भी आत्मा को उनके सत्यता शुद्धता से चलित करना सबसे बड़ा घात करना है। ब्रह्मचर्य की बाबा ने धारणा कराई। ब्राह्मण जीवन की शुरुआत ब्रह्मचर्य से। कितनी महान आत्माएं बैठी है बाबा के पवित्र योगी आत्माएं, दुनिया तो सोच भी नहीं सकती। बाबा ने कहा ना, सन्यासी तो कह ही नहीं सकते, खुद ही घर बार छोड़ के पवित्र बने हैं तो गृहस्थियों को कैसे कहेंगे पवित्र बनो, कहने की शक्ति नहीं आएगी। एक बहुत बड़े मंडले महामंडलेश्वर सेंटर में आए थे तद्रूपानंद जी, तो क्लास के बाद जब वो नाश्ता करने बैठे सेंटर में और उनके साथ कुछ मुख्य भाई बहने, तो अपने एक भाई ने पूछा कि आप अपने आपका जीवन कितना पवित्र है, श्रेष्ठ है, महिमा करके। फिर कहा कि आप अपने भक्तों को जो शिष्य है उनको कहते हैं? कहते हैं हम उनको कहेंगे तो हमारे पास कौन आएगा फिर। तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धारणा हम सभी ने की है, अपने को शाबाशी दो, पीठ थपथपाओ। बाबा के हम बच्चे साधारण नहीं हैं, हम इसी बल से जीतेंगे। और पवित्र योगी बनकर भी हम रोज ज्ञान योग करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। अंश भी नहीं रहे। रोज बाबा कहते हैं क्रोध नहीं करना है, लोभ में नहीं फंसना है, मोह में नहीं फंसना। रोज बाबा कहते हैं ना, पवित्रता तो आज बाबा ने शक्तिशाली रूप से कह दी, पतित यहाँ आ नहीं सकता। तो देखो अव्यक्त बाप दादा से कौन मिलन मनाते थे, पवित्र भाई बहन ही मिलन मनाते। बच्चे तो पवित्र ही बाबा से मिलने आते हैं ना, वो थोड़ी वो मिलन मनाने थोड़ी जानते हैं जो वीआईपी आते हैं कभी कोई, ये बच्चों की बात है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहता डबल अहिंसक, किसी को दुख नहीं देना है। किसी को दुख देना शब्दों से, भावनाओं से आत्मा को पहुंचता तो है ना, ये कभी मुझे ऊंची नजर से नहीं देखते हैं, पहुंचता है ना, पहुंचता है। ये कभी दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ये दुख देना है। हमें मन वचन कर्म से सुख देना है, क्योंकि सुख देंगे तो सुख मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत है और वो इसमें किसी को माफ नहीं। प्यार देंगे प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट मिलेगा। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है, हमें देना है। छोटे बड़े, युवा बूढ़े, बीमार गरीब, शाहूकार नौकर, स्त्री पुरुष, हमें सबको सुख देना है, स्नेह देना है, रिस्पेक्ट देना है। हम बाबा के रिप्रेजेंटेटिव है ना, हम कॉमन मनुष्य नहीं है, हम भगवान के प्रतिनिधि है। हमें अपने चलन और चेहरे से जो बाबा के गुण हैं वो दूसरों को अनुभव कराने। और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सबसे उत्तम मर्यादा बाबा ने हमें सिखाई, अमृत वेले उठना। जिनकी सुबह सफल, सारा दिन सफल। दिनचर्या की शुरुआत अमृत वेले से। हर दिन सफल, जीवन सफल, पूरा ड्रामा सफल। पूरे ड्रामा को सफल करना है तो संगम युग को सफल करना है, और संगम युग को सफल करना है ब्राह्मण जीवन का हर दिन सफल करना। और दिन सफल करना है तो अपनी दिनचर्या अमृत वेला, सुबह 4 बजे से 8 बजे का समय अपने आप को ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भर लो। बाबा कहते हैं ना, जो अमृत वेले अपने आप को बाबा के प्यार से, शक्ति से भर लेते हैं, फिर दिन में कहीं भी उनकी नजर डूबेगी नहीं, बुद्धि कहीं फंसेगी नहीं। बाबा कहते हैं ना, जो अमृत वेले दिल से मुझे याद करते हैं उनको सारा दिन स्वतः बाबा की याद आती रहेगी। वो याद का रस बाबा का प्यार भर ले। तो देखो देवता बनना सहज है ना, मुश्किल बाबा ने नहीं सिखाया। लक्ष्य है तो कोई मुश्किल नहीं, खुद की दिल नहीं है तो कदम कदम में मुश्किल है। पर कहते हैं ना, भाई मन है तो मालवा जा सकते, ऐसा कहते हैं, मन चंगा तो ऐसे कहते हैं ना। तो बस अपने संकल्प की बात, हम सभी ने लक्ष्य बना लिया तो आज सारी धारणाएं नेचुरल हो गई। आपके साथ और भी कई कोर्स करने वाले होंगे, उन्होंने नहीं किया वो नहीं बने, है ना। तो ये है हमारा अलंकारी स्वरूप कि अभी हम अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाते हैं जो दिव्य गुणों की धारणा स्थायी परमानेंट इफेक्टिव रूप से धारणा हो जाए। दुनिया में तो कहते हैं ना कि वैसे मैं शांति से ही बात करता हूं, पर उसने बोला ऐसा ना तो उनका दिव्य गुण गिर गया, खत्म। टाइम पर परिस्थिति के समय ही धारणा नहीं रहती है। तो ये तो ऐसी बात हुई कि वैसे मेरे पर्स में सभी बीमारी की दवाई रहती है, पर बीमार हो जाता हूं तभी गुम हो जाती। तो जब ऐसी बात आती है, पता है ना, अब तो आप अनुभवी बन गए ना, जिसके साथ रहते हैं, कब कहां से गोली आएगी पता है ना। पहचान गए ना, अब ब्राह्मण परिवार में भी हम पहचान गए कि एक दो से बात कब आती है। तो इतना डिटैच रहें, इतना अलौकिक रहें, जो सेफ भी रहें, और फिर खुद भी दृढ़ता कर लेते हैं कि बात जब आए तब मुझे ज्ञान स्वरूप गुणमूर्त रहना है, अलंकार छूटना नहीं चाहिए। तभी तो हमारे अलंकार बाबा कहते हैं विष्णु को दे दी। क्योंकि बच्चे कमल बनते हैं तो कभी गदा उठाते हैं, कभी चक्र चलाते हैं, कभी शंख, एक साथ धारणा नहीं रहती। तो ये हमारे अलंकार है, स्वदर्शन चक्रधारी मुझे बनना है, स्वचिंतन, पर चिंतन का चक्र न चले। पर चिंतन से तो गिर गए ना, बाबा ने कहा ना, इतनी ग्लानी की इसलिए तुम गिर गए, देवताओं की ग्लानी की, बाबा की ग्लानी की, झूठी बातें बताई लोगों को। स्वदर्शन, स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शंख मुख से ज्ञान ध्वनि करना, सेंसिबल बातें करना, कमल पवित्र निर्लिप्त अलिप्त। कलियुग में भी कमल, ब्राह्मण परिवार में भी कमल, यहां भी कहीं अटैच नहीं होना। और ज्ञान सदा बुद्धि में, याद है तो बाबा कहते हैं आबाद है, भूल गए तो अवस्था बिगड़ेगी, इसलिए ज्ञान याद रखना है, धारण करो। बाबा कहते हैं ज्ञान की धारणा होनी चाहिए, ऐसे नहीं आगे आगे पढ़ते जाएं पीछे पीछे भूलते जाएं, नहीं। आज बाबा ने क्या कहा, क्या कहा आज बाबा ने, दिल वाले को दिल देना है तो दिल कैसा चाहिए, साफ। दिल साफ तो मुराद हासिल, हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो और क्या चाहिए? दिल साफ। और बाबा ने ज्ञान भी दिया, दिल आत्मा में है। दिल माना बुद्धि, ये फिजिकल हार्ट की बात नहीं है, बुद्धि की शुद्धि चाहिए। ओम शांति। तो बार बार दो स्वरूप याद करने हैं, निराकारी और सतयुगी अलंकारी। Thank you.